एक दिन विनोबा ने कहा, माँ तुम बोलती हो कि सब में भगवान है, व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी माँ तुम खुद ही पक्षपात करती हो, रोटी बच जाती है तो बासी रोटी मुझे देती हो, खुद खाती हो फिर बचती है तो मुझे देती हो, लेकिन इस विद्यार्थी के लिए कभी बासी रोटी तुमने नहीं परोसी, इसके लिए गर्मा गर्म बनाती हो, तो मेरे को अपने को तू बासी रोटी खिलाती, मेरे को बासी खिला देती, लेकिन उसके लिए ताजी बनाती तो पक्षपात नहीं तो क्या है। अब भारत की नारी ने जो जवाब दिया महाराज, रखुनाई देवी कहती है, देवी नहीं तो और क्या है, कहाँ है मोह, जिसको अहंकार नहीं फांका नहीं उसको मोह नहीं, और जिसको फांका है उसका मोह जा नहीं सकता, अहंकार में ही सब दोष रहते हैं, मोह काम क्रोध लोभ भय चिंता ये सारे दुर्गुण अहंकार में रहते हैं, अहंकार को दूसरी भाषा में फांका भी बोलते हैं, ब्लड में भी होता है फांका, गुरु छूटे तो छूटे फांका न छूटे, समाज छूटे तो छूटे फांका न छूटे, कुल बर्बाद हो जाए तो हो जाए लेकिन फांका बर्बाद न हो, ऐसे लोग रावण जैसे कंस जैसे कुल बर्बाद कर दिया लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, इसी का नाम है प्रगाढ़ मोह प्रगाढ़ अहंकार। रावण को कितना चांसेस मिला था राम जी के तरफ से, कंस को कृष्ण के तरफ से कोई सताया थोड़े गया था, लेकिन कृष्ण का फांका, उसका कंस का फांका, रावण का फांका, कुलों को बर्बाद कर दिया, ऐसे दादाजी के फांके ने भी कुल को बर्बाद कर दिया। तो जो दादागिरी है मन की, उसको बचाने के लिए देवी संपदा पुस्तक साधक को अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए। खैर, रखुनाई कहती है कि बेटा मुझ में पक्षपात है, और पक्षपात कैसा है कि खुद बासी खाती बेटे को बासी खिलाती और अतिथि जो गरीब अनाथ बच्चा घर में उसको ताजी रोटी देती। बोले मुझे अतिथि रूप में इस बालक में तो भगवान देखते हैं, लेकिन तू तो अभी बेटा देखता है, जब जिस दिन तेरे में भी भगवान देखेगा तो तेरे को भी ताजी रोटी खिलाएगा, तेरे में अपना बेटापन दिखता है, दूसरे के बेटे आश्रम में आकर समर्पित हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ 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 बराबर छे, हम तो आ सेवा नहीं करते, हम चलो फलाना ने बदली करी दो, फलाना ने हटावी ने नौकर मुकी दो, लेकिन अपना बेटा जब आश्रम में आता है तो के मैं करीन पाछो उतानी जाऊं पाछो खेची जाऊं, ये मोह नहीं तो और क्या है। किसी का बेटा साधु बनता है तो आप शिष्य बनकर हाथ जोड़कर हाजिर हो जाते हैं, लेकिन आपका बेटा साधु बनता है तो कोने में रोते हैं या तो ट्राई करते हैं कि बेटा वापस आ जाए, ये मोह नहीं तो क्या है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है भैया। किसी का बेटा साधु बनता है तो हम उसके चरण छूते हैं प्रणाम करते, और अपना बेटा जब साधु बनने को जाता है तो माँ बाप रोता है कि मारो छोकरो भागी गयो, छोकरा अमेरिका जाता है और लेडियों के चमड़े चाटता और गंदी योनियां चाटता है, उस वक्त तो अखबार में नाम छपाते कि मारो बेटो अमेरिका गयो छे, अने पछी लेडियों नी हाथे हूँ करे छे, लेडाओ नी हाथे भंडवा जती युवती शू करे छे, ई बधा समझे छता है अमेरिका रिटर्न मारो लेडो ने लेडी छे, ये मोह नहीं तो और क्या है। कितनी बेवकूफी है, कितना पाश्चात्य अंधा अनुकरण है, डिस्को करना, विस्की पीना, पत्नियां बदलना, ये गंदगी आ रही उसका तो कोई चिंतन नहीं, कोई बचाव की बात नहीं, लेकिन कोई कथा में सत्संग में जाता है कोई युवान युवती के, अरे अभी तुम्हारी उम्र सत्संग में थोड़े, तुम तो अभी है, तुम हमारे जैसा अपने आप को घिस डालो सत्यानाश कर दो फिर जाना। नारायण, ये मोह नहीं तो क्या है। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला, जहाँ सुख नहीं है अमरता नहीं है, धोखा ही धोखा है, वहाँ सुख अमरता और सदा हम बने रहे, ये जो मान्यता है मन की, ये मोह है। जहाँ सुख है मुक्ति है अमरता है वहां के लिए समय नहीं है, वहां का इतना आदर नहीं। जो प्रेम भगवान को करना चाहिए, जो प्रेम जो समय मुक्ति के लिए लगाना चाहिए, वो समय और प्रेम हम बंधन के लिए लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोटी नहीं मिलती खाने को, रोटी तो क्या एक आदमी कमाता सौ खाते थे, अभी तो लेडी भी कमाती लेडा भी कमाता फिर भी परेशानी जाती नहीं, मुसीबत जाती नहीं। आज का आदमी ईंट चूना जुटाने में अथवा आटा दाल जुटाने में ही अपने को खपा देता है, और थोड़ा समय बचा तो राग की बातें या द्वेष की बातें चिंतन करके अपना माइंड बेच देता है। जीवन राग द्वेष के चिंतन में या आटा दाल जुटाने में ही नष्ट नहीं करना है, जीवन का बहुमूल्यवान उपयोग करना है कि अति उत्तम से उत्तम जो अपने हृदय में आनंद का खजाना है, चैतन्य का प्रसाद है और जीवात्मा परमात्मा का सतत वो सोर्स जो है उसको पाकर जीते जी मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है। बचपन में युवानी में ऐसा संग नहीं मिला, और फिर ऐसा कभी संग मिलता है हम गुरु वाले हो जाते हैं, लेकिन गुरु के नहीं होते, होते मन के हैं। अपने मन को अच्छा लगा, कुछ तो ऐसे बेवकूफ भी लोग हैं कि हम गुरु के द्वार पे जाते हैं तो हमारे लिए जरा हम जैसे आदमी हैं ऐसा हमारे लिए व्यवस्था सुव्यवस्था नहीं होती। ध्यान से सुने ऐसे बेवकूफ लोग, उन बेवकूफों को याद रखना चाहिए कि गुरु के द्वार पर राजा भरतृ गए थे और कैसे रहे थे, जयराम जी की। उन बेवकूफों को याद रखना चाहिए कि ईश्वर के नाते गुरु के द्वार पर अनकंडीशनल सरेंडर, गुरु के द्वार का कुत्ता होकर भी रहना सम्राट बनने से हजार गुना अच्छा होता है। जो चाहते हैं कि गुरु के द्वार पर भी हमारे ईगो की रक्षा हो, वे कृपा करके गुरुद्वार पे आना बंद कर दें। तुम्हारे अहंकार की रक्षा कभी नहीं होगी यहाँ, तुम्हारे अहंकार का विसर्जन होगा और तुम्हारा और तुम्हारे 21 कुलों का कल्याण होगा, ये गुरुद्वार का लक्ष्य है। मानपुरी है जहर की, खाए सो मर जाए। भगवान रामचंद्र जी गुरुद्वार पे कैसे रहते, नंगे पैर भागते गायों के पीछे, राजा दिलीप गौ चराने जाते हैं, इन बिचारों को पता ही नहीं। लॉर्ड मैकलन ने ऐसा हमारे देश में ऐसा एक पॉइजन फैला दिया कि भारतीय संस्कृति की रीत भात से जो आदमी में महानता आती वो सारे सोर्स कट गए। अब तो खाली बाह्य दिखावा और अहंकार, जो कहलाने वाले सेठ और धार्मिक है वो भी चाहते हैं कि हमारी खुशामत हो तो हम संस्था में आए और रहें। उनको पता ही नहीं कि राजा दिलीप जैसा व्यक्तित्व जिसके एक इशारे मात्र से कुबेर भंडारी बरसात कर लेता है, देवता जिसका अभिवादन करते हैं, ऐसा दिलीप राजा, रघुवंश में दिलीप राजा, रघु राजा संकेत करता है, कुबेर भंडारी थर थर कांपता है, सोने मोहरों की बरसात कर देता है, ऐसा व्यक्तित्व खिला था इस संस्कृति के जवानों में, वीरों में, राजाओं में। अर्जुन सशरीर गया है, कैसी कितनी योग्यता है इस संस्कृति में। और मेकाले ने संस्कृति से विमुख कर दिया और फिर हम लोग पढ़े ऐसे ही, तो हमारी मेंटालिटी, हमारा चिंतन थिंकिंग हो गया कि यही जगत सब कुछ है और यहाँ का हम जो दुकानदारी में मैनेजर मुनीम बनाकर इधर उधर करके जीते और बड़े सेठ सेठ चापलूसों से हमारी खुशामत होती है, अथवा किसी नेता जो हमसे फंड लेना चाहते हैं वो नेता भी हमारे घर आकर रहते हैं, दो एमपी ने खुशामत कर दी, दो एमएलए ने खुशामत कर दी, 100-200 आदमियों ने खुशामत कर दी, तो बुद्धू सेठ समझता कि मैं बुद्धिमान हूँ, महामूर्ख है वो, तेरे को उल्लू बनाकर पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु तेरे को सतपुरुष बनाकर साक्षात्कार कराना चाहता है, मूर्ख। तो जो लोग धन का गर्व लेकर आते हैं और धन का गर्व टिकाए रखना चाहते हैं, वो गुरुद्वार से फायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता उनको। जो सत्ता लेकर आते और सत्ता का अहंकार टिकाकर गुरु के द्वार पर टिकना चाहते हैं, उनको वो गुरु प्रसाद नसीब नहीं होता है। ये जो भी तुम्हारे पास योग्यता है ये तो कुछ भी नहीं है, अरे इंद्र का पद भी कुछ नहीं है। ऐसा आत्म पद दिलाने वाले गुरु के आगे तू अपना अहंकार छोड़ दे और अपने नश्वर इन सुविधाओं को और नश्वर अपनी मान्यताओं को आग लगा दे और तू सदा के लिए अमर हो जाएगा, सदा के लिए आगों से बच जाएगा। नहीं तो 84 लाख जन्मों में बार बार आग के लपटे सहनी पड़ेगी, मरते तभी भी लपटे सहते हैं, काम क्रोध की आगे अंदर लपटे ले ही रही है। महाराज गुरु नानक प्रेम बांटते आवभगत करते हैं आरंभ में, फिर देखा कि अब लोग थोड़े समझदार हुए, गुरु नानक ने रुख बदला, ऐसा झाड़ देते कि लल्लू पंजू तो बिल्कुल दूर हो गए। यहां तक कि नानक जी को कठोर कठोर शब्द कठोर कठोर गालियां बोलनी पड़ी। 60 वर्ष की उम्र में तो श्री गुरु नानक ने उग्र रूप धारण कर दिया। भाई लहणा सेठ आदमी था, देवी का उपासक था, नानक का किसी ने दर्शन करा दिया, वो फिदा हो गया। नानक जी एकांत चाहते हैं, बांट दिया जो अधिकारी रहे बाकी के बिखरे। भाई लहणा और दूसरे कुछ लोग लगे रहे बाला मर्दाना लगे रहे, नानक जी का उग्र रूप कैसा भी हो लेकिन फिर भी सत्वचन। भाई लहणा ने ऐसी सेवा की और अपना सर्वस्व लुटा दिया और नानक जी की अंगत सेवा की। नानक जी का कार्य वो मेरा कार्य, गुरु का कार्य नहीं है तो मेरा ही कार्य है, वो समझो गुरु का अंग बन गया, गुरु का अंगत बन गया। जैसे हाथ पैर आपके अंगत चीज है ऐसे ही वो सेठ गुरु का अंगत बन गया। गुरु ने देखा तूने मेरे लिए सब कुछ लुटा लिया तो मैं तेरे लिए लुटाने में देर क्या करूंगा, इधर आओ। कर दिया तिलक और आज से तेरा नाम लहणा, भाई लहणा, भाई मनस सेठ, सुखी आदमी को, इज्जत वाले को। जैसे बिरला का आ तो बिरला जो छेटले पति गयो, ऐसे सिंधी जगत में पंजाबी जगत में भाई 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 साहब भी बोलते भाई। भाई लहणा को इतना समर्पित देखकर गुरु नानक ने कहा कि आप तू भाई लहणा नहीं, तू तो गुरु का अंगत हो गया, आज से तेरा नाम भाई अंगत साहेब। और गुरु ने आध्यात्मिक गादी तो दे दी, लौकिक गादी भी गुरु नानक ने उसी अंगत के जिम्मे कर दी। भौं सुवारूं भूखे मारूं ऊपर थी मारूं मार, इतनू करता हरी बजे तो करी नाखू निहार। बोले तो आटलू बधी आपड़ी ताकत नथी, आपड़ी शक्ति नथी, आपड़े तो पोटला बांधो, पोटला बांधी ने क्या सुरक्षित जग्या जसो, त्याय मरवानू छे, त्याय अपमान तो सहन करवानू छे। और एक बार नहीं संसार में जाएंगे तो वहां भी अपमान होता है लेकिन वहां नश्वर चीजों के लिए होता है और यहां अपमान अपमान के लिए नहीं होता है। मान की वासना मिटाने के लिए कभी अपमान हो गया अथवा मान कम मिला तो तू फिकर मत कर, ये मान पूरी कम मिले तो क्या, न भी मिले तो तू ऐसा प्रयत्न कर। मेरे गुरुदेव जो बाल्यकाल से सिद्धियां लेकर आए थे, गोदाम भर जाता है सीधे सामान से, जरा सा ध्यान प्रार्थना करते थे, ऐसे महापुरुष को दर दर की भिक्षा मांगनी पड़ी रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं, जो संकल्प मात्र से गोदाम भर सकता है वो महापुरुष रोटी के लिए नारायण हरि करने जाए। और मेरे को संपत्ति की कमी नहीं थी, दिशा के नगरवासियों से पूछो हम भिक्षा पात्र लेकर निकलते नारायण हरि, अपने पास जो संपत्ति उसका भंडारा भंडारा साधु संतों में गरीबों मार दिया और फिर रोटी मांगने को निकलते। हालांकि हम चाहते तो वहां रोटियों के ढेर रोज लग जाते लेकिन अनजान जगह पे रोटी मांगने जाते और मन को बताते कि देख अब मान अपमान का कैसा असर होता है। जब आप ईश्वर प्राप्ति को महत्व दोगे, उतना ही साधन को महत्व दोगे तो कहां कौन सी कमी है उसको आप निकालने को तैयार हो जाओगे तो गुरु कृपा एकदम 303 जैसा काम करेगी, मदद करेगी। और आप अगर राजी नहीं है तो फिर वो शेर सिंह जैसी हालत हो जाएगी। एक लड़के का नाम था शेर सिंह, सिंह भी शेर भी दोनों मिल गए। दूसरों ने कहा तू शेर सिंह काय का, कोई निशानी तो बता, कम से कम तेरे हाथ पर शेर तो छपवा के आप पागल। शेर सिंह नाम रख दिया। वो गया, वो ढूं करके मशीन चलती ना, हरा रंग बरसाती हूँ अंगों पर, जो नाम माम लिखते हैं ना शरीर पर चमड़ी पर। उस आदमी को हुआ कि मैं शेर छपवा दूं, दिया बाहा, बोले मेरी बाहा पर शेर छाप दीजिए। उस आदमी शेर छापने वाले ने उठाई अपनी मशीन, भौंका सुई, बोले क्या करता है, बोले शेर की मैं पूंछ खींचता हूँ। बोले शेर की पूंछ, आजकल तो बिना पूंछ के शेर भी तो अच्छे लगते हैं, और लेटेस्ट जमाना है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है, तो तुम बिना पूंछ का शेर खींच लो। फिर उसने अपने आदमी मशीन ढूंढ, बोले क्या करते, बोले शेर की कमर बना रहा हूँ। बोले जब पूंछ नहीं तो कमर भी, पतली कमर लटकी कमर बोलते हैं, और पतली कमर नहीं के बराबर होती है, और नहीं करोगे तो भी क्या घाटा है, छोड़ो कमर भी ना का करो, पूंछ भी ना का। उस आदमी ने फिर कुछ मशीन को जरा सुई भोंके, बोले ये क्या करते, बोले शेर का मुंह बनाता हूँ, जब कमर नहीं और पूंछ नहीं तो मुंह भी न बने तो क्या जरूरत, क्या घाटा होता है, उनके पंजे ही बना दो शेर के। पंजे बनाए तो सुई भोंकी, बोले देखो देखो जब मुंह नहीं है, खाने का मुंह नहीं है, तो शिकार करने के लिए पंजों की भी क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही शेर बना दो। उस मशीन वाले ने कान पकड़ के एक थप्पड़ मार दी शेर सिंह को कि जा हिजड़ा सिंह। एक एक शेर छपवाने की ताकत नहीं, जरा सुई भोंकवाने की ताकत नहीं, और बना तू शेर सिंह नाम रख के और शेर छपवाने आए, जब पूंछ भी नहीं चाहिए, पंजा भी नहीं चाहिए, कमर भी नहीं चाहिए, उसका मुंह भी नहीं चाहिए, तो शेर कैसे छपूं? हमारा मन ऐसा शेर सिंह तो नहीं होना चाहता है, बोल दो जरा। मान अपमान सहने की तैयारी नहीं, जरा साधन वचन की तैयारी नहीं, जरा गुरु के वचनों को सत करके जंप मारने की तैयारी नहीं, जरा शास्त्र के वचनों को चिपकने की तैयारी नहीं, और आप सदा सुख चाहते हैं तो शेर सिंह जैसा हाल होता है। चाहता हर इंसान सदा सुख है, और जब तक वो चीज नहीं मिली तब तक चाहे कितना कुछ तुम कमा लो, अमेरिका से भी दुगना तुम्हारे पास आ जाए, बुश क्या सुखी है पूरा, जयराम जी की, नरसिंहराव पूरा सुखी है, इंद्र पूरा सुखी है। बाहर की चीजों को और परिस्थितियों को अनुकूल करके जो पूरा सुखी होना चाहता है वह पूरा पागल है, जयराम जी की। ये संसार तो ऐसा चलता रहेगा, कभी धूप कभी छांव, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी मान कभी अपमान, कभी तंदुरुस्ती कभी बीमारी, ये तो चलता रहेगा। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि संसार चलने वाला चलता रहेगा, ये नश्वर नाश को ही प्राप्त हो रहा है, शरीर का ये भाव आएगा, बीमारी आएगी, ये सब आता है, आप स्वस्थ रहें, वातावरण अनुकूल करें, लेकिन उस अनुकूलता में आसक्ति नहीं और प्रतिकूलता से भयभीत नहीं, ऐसी अवस्था जब तक नहीं आए तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। एक बात और समझना, व्यापारी जब समझ लेता है कि माल बेचूं घाटा सह के भी माल निकले तो बहुत अच्छा, घाटा सह के भी खरीद है उससे भी कुछ कम में ये माल निकले तो मेरी जान छूटे, जब घाटा स्वीकार करता है तो घाटा पड़ते हुए भी वो हंसते हंसते माल बेचता है, जयराम जी की, एक बार स्वीकृति दे देता है। ऐसे तुम अंतःकरण से स्वीकृति दे दो कि संसार की जो परिस्थिति आएगी वो शाश्वत नहीं है, मेरे को शाश्वत को पाना है, नश्वर संसार से यथा योग्य व्यवहार करके अपने शाश्वत में छलांग मारनी है, ऐसा स्वीकृति दे दोगे तो तुम्हारा तनाव खिंचाव मोह आकर्षण अपने आप छू हो जाएगा, भोग और मोक्ष दोनों तुम्हारे चरणों के दास होकर रहेंगे। मुक्ति भक्तों के चरणों की दासी होती है, भुक्ति और मुक्ति भक्तों के चरणों की दासी होती है, लेकिन जो मुक्ति के तरफ चलता नहीं, ईश्वर के तरफ चलता नहीं, उसके लिए मुक्ति तो एक ख्याल मात्र रह जाता है, भुक्ति भी उसको भोग डालती है, चाहता है भोग लेकिन भोग से ही वो भोगा जाता है। उत्तम भोक्ता कौन है? उत्तम भोक्ता वह है जो बिना इच्छा के ही भोग उसके इर्द गिर्द मंडारे और जब चाहे तो उपयोग कर ले और जब चाहे तो उसको त्याग कर दे, ये उत्तम भोक्ता है। ऐसा उत्तम भोक्ता साक्षात्कारी और भगवान का भक्त ही हो सकता है। भोग का गुलाम कभी उत्तम भोक्ता नहीं हो सकता है। भोग का गुलाम तो भोग का दास है, भोग का कंजर है वो तो। एड़ी तो कह रहा था कई फाका कंजर कंजर पैदा थिया मरी गया। जो भोग का दास है, जैसे कंजर जाति होती है, जेब काटने के लिए किसी की अंगूठी निकालने के लिए बड़ी चतुराई करते हो, कभी पाल भी लेते हैं, पालते तभी भी डरते डरते सिसकते सिसकते भोगते हैं और अपने कर्म की खाई खोदते हैं, और नहीं पाते तभी भी परेशान होते हैं। ऐसे कंजर और कंजरियां तो कई पैदा हुए मर गए। फाके की रक्षा, ममता की रक्षा, मोह की रक्षा, ये साधन में रुचि नहीं है। इसीलिए मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले ही बिरंची सम। बिरंची ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले, फिर भी जब मोह की रक्षा कर रहे हो, अपनी मान्यताओं की रक्षा कर रहे हो, अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हो, तो बड़ा दुर्भाग्य है। जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं उन्हीं साधनों की तुम रक्षा कर रहे हो। जो तुम्हें आबाद करते हैं उन साधनों में ऐसा प्रीति करो जैसा ये भगवान है। पुंडरीक नाई साधन में साध्य जैसी ही प्रीति करो। भगवान नाम का जप करते तो बस जप में प्रीति करो, संदेह न करो। ध्यान करते तो भगवान में प्रीति करके ध्यान करो। सेवा करते तो प्रीति से सेवा करो। दिखावटी सेवा नहीं, बोझा उतारने के लिए सेवा नहीं, अथवा बिल्ला के लिए सेवा नहीं। अथवा अहंकार दिखाने के लिए मैनेजमेंट वाला सेवक बड़ा कुर्सी डाल के बैठा है, केम से सू करो तेम करो। नहीं नहीं, सेवा करो तो बिल्कुल सेवक हो जाओ। शबरी की नाई, एकलव्य की, एकनाथ की नाई, पूरनपुरा की नाई। तुम जो करो ईमानदारी से करो, क्योंकि भगवान सत्य है। तुम सच्चाई से करो, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। तुम ध्यान करते हो, रोना आता है फिर भी लोग क्या कहेंगे, हंसना आता है लेकिन लोग क्या कहेंगे। अरे चार लोगों के लिए तो ईश्वर की मस्ती का त्याग कर सकता है, तो ये मोह है। मीरा के गीत या नृत्य किसी नर्तक ने गायक ने नहीं सिखाए थे। मीरा बस रहीदास की आज्ञा मानकर चल पड़ी चल पड़ी। जो कुछ होता था ईमानदारी से करती थी। लोग क्या बोलेंगे अगर मीरा सोती नहीं, तो मीरा देखो कितना साहस। एक राजवी कुटुंब की युवती रानी और घिंघरू बांधकर साधुओं के बीच में कृष्ण कीर्तन करती। आदमी की भी इतनी हिम्मत नहीं, बोलो समिति ने इतनी हिम्मत नहीं जितनी मीरा ए करी। मीरा तो स्त्री थी, अब तो पुरुष है जयराम जी की। तो हमने अपने मैं को, अपने नश्वर देह को मैं माना और इसको इम्पोर्टेंस दिया। नश्वर जगत की चतुराई को सर्वस्व माना, इसको इम्पोर्टेंस दिया। इसलिए हम धोखा खाते। ईश्वर पाना कठिन नहीं है, पूरा जीवन पाना कठिन नहीं है, जीसस होना कठिन नहीं है, बुद्ध होना कठिन नहीं है, राम तीर्थ होना कठिन नहीं है, समर्थ रामदास होना कठिन नहीं, कबीर होना कठिन नहीं, मदालसा स्वयं प्रभा और सुलभा की अनुभूति पाना कठिन नहीं है। लेकिन इन शत्रुओं से बचना कठिन लगता है, क्योंकि इन शत्रुओं को हम खुद पोष रहे हैं, खुद सत्ता दे रहे हैं। मोह को हम पोषते हैं, अहंकार को हम पोषते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए मुसीबत हो रही है। एक मरणियो सोने भारे, एक आदमी मरने को निकलता तो 100 आदमी को भारी हो जाता है। ऐसे तुम आज से पक्का कर लो कि ईश्वर साक्षात्कार करना है, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर ही सर्वोपरि है, आत्मा परमात्मा ही सर्वोपरि है। और जो परमात्मा सर्वोपरि अब लग जाएगा, तो जिसको परमात्मा मिल जाता है उसके लिए तो इस लोक का तो क्या, 14 लोकों का भोग उसके लिए तो दास बनकर पीछे पीछे घूमता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उस एक में प्रीति करो बाकी सब सध जाएगा। और सब को संभालते संभालते एक का त्याग कर दिया तो सब भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। बुढ़ापे में तो शरीर भी दुश्मन हो जाता है। ईश्वर को छोड़कर जो तुमने मित्रों को पाला, मित्रों से धोखा खाओगे, बिल्कुल पक्का समझ लेना। ईश्वर को छोड़कर माइयों ने सहेलियों का पालन पोषण करा, खुशामत की और एक दूसरे की चमची बन गई, वहां उनको धोखा मिलेगा। दुख मिलेगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। जो प्रेम भगवान को करना चाहिए वो प्रेम अगर तुमने अहंकार को किया तो जरूर तुम कुछ ले जाओगे। जो प्रेम परमेश्वर को करना चाहिए वो प्रेम अगर तुमने पद और प्रतिष्ठा को किया तो जरूर अशांति तुम्हारे अंतःकरण को जलाएगी। जो भरोसा भगवान पे करना चाहिए वो भरोसा अगर रुपयों पर अथवा सत्ता पर किया तो वहां से जरूर धोखा मिलेगा। जो भरोसा परमेश्वर के जो जीवन परमेश्वर के नाते होना चाहिए वो जीवन अगर नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगाया तो ये नश्वर वस्तुओं की चिंता के बोझ से तुम्हारा अंतःकरण दब जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। लाखों करोड़ों लोगों के अंतःकरण दबे हुए। हंसने का पूरा सामान है फिर भी आदमी रोता है। मुक्त होने का पूरा सामान है फिर भी आदमी बंधन में जकड़ा है। क्यों बंधन में जकड़ा है? कि उल्टा ज्ञान है। उल्टे ज्ञान को शास्त्र ने कहा मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। ईश्वर पाने के लिए समय ज्यादा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो समय पर्याप्त है लेकिन ईश्वर से विपरीत जाने का फिर काम करते। एक दो घंटा साधन भजन करते हैं ईश्वर के रास्ते चलते हैं तो 22 घंटा फिर नश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं तो साधन भजन की जो मस्ती और योग्यता है उसको बिखेरने में ही हम लग जाते हैं। अगर सतत थोड़ा समय लगे और मूल्य दें। सतत का मतलब घर बार छोड़कर लगे इतना ये भी जरूरी नहीं। घर बार तो छोड़ देते फिर भी जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगते। गपशप लगाएंगे घर बार छोड़ दिया इधर से उधर टालम टोली करेंगे सुल्फा फूंकेंगे ये करेंगे वो करेंगे नहीं। रोते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, हंसते तो ईश्वर के लिए, चिंतन करते तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, ज्ञान सुनते तो ईश्वर विषय में। बस तदाकार वृत्ति तत्श्रवणम तत्कथनम अन्योन्य तत्बोधनम। आपकी बुद्धि ब्रह्ममय हो जाए ईश्वरमय हो जाए। ईश्वर तो यही है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ईश्वर को प्रेम होता और दूसरी वस्तु को प्रेम करो तो मोह हो जाता है। शरीर को प्रेम करो तो मोह बन जाएगा। शरीर को मैं मानो तो मोह है लेकिन आत्मा को मैं मानो तो प्रेम है। जयराम जी की कितना आसान है। मैं तो मानना ही है तो शरीर को मैं मानो तो मोह पनपता है सारे दुख आते हैं और आत्मा को मैं मानो तो सारे दुख ठीक के हो जाते। दुख का प्रभाव हट जाता है। पंखा घूमता लेकिन फ्यूज उड़ गया तो कितना इसका प्रभाव। दुखों का फ्यूज निकालना है तो बस परमात्मा में प्रीति कर दे और देह को मैं मानने की जो वृत्ति है उसको हटा दे। देह से सुखी होने की देह से महान होने की बेवकूफी को छोड़ दे काम बन जाएगा। अच्छे विचार बहुत मुश्किल से कभी कभार मिलते हैं। गुलाब की कलम कभी कभार कहीं लगी हुई मिलती है बाकी तो बारिश में घास तो खूब अपने आप होता है। तो हल्के विचार और पतन के विचार तो वातावरण में मिलेंगे। रणभेरी तो सुन सुन के आदमी युद्ध में मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन जो अंतर के शत्रुओं से भिड़ कर उनको मारता है वह महावीर बन जाता है। अहंकार को पोछते पोछते तो आदमी कूद भी पड़ता है भैरवी भगवा भैया कूदो 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 आत्महत्या कर दिया। अरे तू ऐसा हो कि ये करता है अरे इससे क्या जीना। जियो तो थार से जियो नहीं तो मरना अच्छा। दो पांच आदमी ने चढ़ा दिया और छोरे ने टिक 20 पी लिया आत्महत्या करके मर गया सुसाइड कर लिया मर गया। हर 18 मिनट में कई अमेरिका में समझदार लोग धनवान लखपति करोड़पति मर रहे। ये मरना कोई सार थोड़े है। मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। जितने लोग आत्महत्या करके मरते उतने ही लोग अगर किसी सदगुरु के पास आकर अहंकार को विलय करते तो आज संसार स्वर्ग से भी अधिक उन्नत होता। जितने लवर लवरियों की याद में और मोहब्बत में आत्महत्या कर लेते उतने ही लोग अगर महिला आश्रम में लड़कियां और पुरुष आश्रम में लड़के लग जाते तो न जाने कहां पहुंच जाता देश। मैं छोटी कहानी का सुनाकर पूरी करता हूँ कथा। भोजू गया काशी पढ़ने को। काशी पढ़ने को गया काशी का विद्वान आचार्य भुजू के गांव पहुंचा डेढ़ साल के बाद। भुजू के बाप ने पूछा कि मेरा बेटा पढ़ता है, खाता पीता है, मनी ऑर्डर भेजता हूं छुड़वाता है, कपड़े लगते पहनता है, अच्छे मौज में रहता है। बोले खाता भी है, पानी पीता भी है, कपड़े भी पहनता है, मनी ऑर्डर भी छुड़वाता है, बफ गुलाब भी बनाता है, सब करता है, सब ठीक है, खाली दो बात की कमी है। भुजू का बाप अपनी पीठ थापता है, आखिर तो मैं मेरा बेटा है। बोले दो बात की क्या कमी है? बोले अपनी उसको अक्कल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। ये तो गुरु ने आश्रम बनाया, तुम अपने आप में जग जाओ, तुम महान हो जाओ। इसी गुरु कहीं हड़काया कुतराया कैडू नहीं कि बधाने बढ़वा दे। गुरु अगर कभी डांटते हैं तो तुम्हारे बेवकूफी को डांटते हैं, तुम्हारे दोषों को डांटते हैं। तुम्हारी तो हर रोज महिमा गाते गुरु, तुम्हारी तो प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे लिए तो गुरु ने आश्रम बनाया। तुम अपने आप में जग जाओ, तुम महान हो जाओ, इसीलिए तो गुरु ने आश्रम बनाया। वो जमाना था कि लोग आश्रम बनाते और गुरु कभी कभार आते संकेत करते, अथवा घर बार छोड़कर गुरुओं के वन में जाते और गुरु के वहां व्यवस्था करते और गुरु से था। अब तो गुरु पंखा मंगवाए, गुरु लाइट लगवाए, गुरु मीटर बदलवाए, गुरु ये करवाए, गुरु ये करवाए, रात को गुरु ऑडिट करे के चेला भैया ठीक से है कि नहीं, जयराम जी की इंटरकॉम से पूछे कि रसोई वसोई क्या बना, कैसा बना, खट्टा खारा ज्यादा तो नहीं, कंकड़ी वंकड़ी तो नहीं आती, चेक करो, ये करो। इतना इतना गुरु ख्याल करते, फिर तुमको डांटते तो कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े हैं। जयराम जी की। ये बात तो बहुत साची है, पण बापू को खतम करे इतने पछी माइंडेड मानस वो नहीं आवता। ऐसे माइंडेड को लिए हमने खोला भी नहीं। जयराम जी। ऐसे माइंडेड आदमी जाओ, लेडियां बुला रही है, क्लब बुला रहा है, उधर ही जाओ। गुंदलो पीर ध्यान सा बुधे कि जरा ऐसा वैसा होता ना, इसलिए माइंडेड आदमी नहीं आते। माइंडेड आदमी को अहंकार का भूत लगा है, उसलिए नहीं टिकते। राजा जनक जैसा माइंडेड कौन था? भरतरी जैसा माइंडेड भिक्षा दे ही करता है। हम क्या उन माइंडेड आदमियों से क्या कम थे क्या कि हम गुरु के द्वार पर बर्तन मांजते अंगुलियों में से खून निकल जाता, बाजार में सब्जी खरीदने जाते दो रुपये की, यहाँ हजारों लाखों रुपए का व्यापार करते, लेकिन गुरुद्वार की दो रुपये की सब्जी खरीदने जाते, डेढ़ मील चल के जाते, डेढ़ मील चल के आते, नैनीताल की बाजार से लेने जाना पड़ता था, नैनीताल के जंगल में रहते थे, डेढ़ दो मील चलना पड़ता था। तो जो माइंडेड आदमी अपने को समझते हैं, उनके माइंड का इलाज होना चाहिए। जयराम जी की। और हम इलाज नहीं करें, खुद ही इलाज करें कि तुम जिस बात में चतुर हो अथवा जो चीजें पाकर तुम सुखी होना चाहते हो, तुम सुखी हुए कि रोते रहे और तुम्हारा रोना किसने मिटाया? जयराम जी की। हे माइंडेड आदमी, तुम्हारा रोना किसने मिटाया? तुम्हारा पाप ताप मिटाकर तुम्हें अमर पद किसने दिखाया? संतों ने, शास्त्रों ने, गुरुवाणी ने दिखाया कि डिस्को वालों ने दिखाया कि परदेसी चकाचौंध ने दिखाया? चरण साध के धो धो पी, अर्थ साध को अपना जी, गुरुवाणी में आता है कि हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं तो ये वाणी भूल गए। तो जब तक हमारा साध्य और साधन में प्रेम तीव्र नहीं होता, तब तक थोड़ी सी प्रतिकूलता अथवा थोड़ा सा मान अपमान आएगा, साधन ढंग, श्रद्धा ढंग, ऐसा आदमी 2-5% चला तो बहुत हो गया। जयराम जी की। ऐसे आदमी को भी फायदा तो होता ही है, जितना भी चला, 2% भी चला, तभी भी बहुत हो गया उसके लिए, बिचारे के लिए। नारायण 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 नारायण। जिस दिन भगवान में और गुरु में दोष दिखने लग जाए, समझ देना उस दिन तुम्हारा शैतान जोर में है। जयराम जी की। अहंकार फाका ईगो अथवा अपना ऐहिक अहंकार ज्ञान जोर में है, बड़ा स्वस्थ है, तुम्हें पटक देगा। और जिस दिन अपना दोष या अपने इतने दिन बीता और बेवकूफी में चले गए और अंतःकरण पूर्वक मानता है कि अरे मेरी चतुराई मेरी समझ मेरे को धोखा देती है, शास्त्र गुरु और भगवान ही ठीक है, उस दिन समझो कि तुम्हारा दैवत्व जगा है, उस दिन तुम्हारा उत्तरायण है, देव जागरण दिन है। शास्त्र भगवान और गुरु में प्रीति कम हो और दोष दिखे तो समझ लो कि भविष्य में मुसीबत आने वाला है, जयराम जी की अशांति घर बैठे मिलने वाली है, बिल्कुल पक्की बात। अब गुरु में दोष दर्शन न दिखे और गुरु चाहे तुम में तुम दोष देखो ऐसा आचरण भी करे फिर भी तुमको लगे क्या हाँ, कितने दयालु हैं। जैसे कृष्ण के पास गए सुदामा जी, ओम सुदामा जी, सारी अपनी गरीबी और कंगालियत का बयान कर दिया। श्री कृष्ण ने दुशाला उड़ाया लेकिन लौटते समय दुशाला भी छीन लिया कृष्ण ने, कुछ दिया नहीं। और सुदामा कहता कि भगवान कितने दयालु हैं, मुझ गरीब मित्र पर कलंक न लगे कि ये अमीर मित्र से कुछ लिए जा रहा है, इसलिए भगवान ने जो कपड़ा उड़ाया था वो भी मेरा वापस छीन लिया, भगवान कितने दयालु हैं। समझ लो ऐसा आदमी भगवान को पाने में उसी समय सफल हो गया। और जब घर पहुंचे हैं तो सुशीला जो कंगली जिंदगी बिताती थी, एक ही साड़ी, उसी साड़ी में नहाती और अपने अंग पर ही सुकाती, साड़ी बदलने के लिए एक चिथरा नहीं था, ऐसी गरीबी में जीने वाली, फिर भी सुदामा को कभी नहीं हुआ कि भगवान हम इतना भजन करते तू ये करता है। जो संसार की चीज के लिए भगवान को या गुरु को चिल्लाता या कहता है वो तो मानो भगवान और गुरु का अपमान करता है। सम्राट तुझे परम पद दे रहा है और तू चवनी मांग रहा है। सुदामा की इच्छा नहीं होती थी मांगने की, पत्नी ने सिर खपाया गए। और जब लौट के आए देखा कि जो कंगालत से जीने वाली सुशीला थी वह महारानी बनी बैठी और महल में, ये कैसे हुआ? बोले तुमने प्रार्थना की होगी, श्री कृष्ण के संकल्प से रिद्धि सिद्धि ने सब बना दिया। सुदामा कहते कि भगवान कितने दयालु है, दुशाला छीन लिया तो सुदामा ये पॉइंट सोचता कि भगवान कितने दयालु है, गरीब मित्र छीन के जा रहा है लेके जा रहा है, इस कलंक से बचाने के लिए भगवान ने दुशाला ले लिया। जब सारी सुविधाओं खड़ी कर दी तो सुदामा कहता कि भगवान कितने दयालु है कि मेरा भक्त ध्यान भजन से कहीं चलित न हो जाए इसलिए सारी सुविधाएं ले दी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार। जब व्यापारी घाटा स्वीकार करके माल बेचता है तो हंसते हंसते बेचता है, जयराम जी। ऐसे तू अपमान स्वीकार करके चलना चाहेगा तो अपमान में भी तुझे हंसी आएगी और मान में भी हंसी आएगी, लेकिन मने मान मोले यानी मारू घसातू कदी ना था तो चलो यमदूत 84 लाख जन्म होती घसतो जैसे एनु हूं करीश देखरा। मेरे को तो मान मिले, मुझे तो वाहवाही थे सदाई मुखे भाई नहीं मानू जगह मां पा जो बस बड़ो माऊ दिस जा, पर घणन जन जो मिजमान है योग तो यार याद कर। अपनी बड़प्पन दिखाने की आदत जब गहरी हो जाती है तो आदमी सच्ची बड़प्पन का कतलाम करने में भी देर नहीं करता। सच्ची बड़प्पन सतगुरु के द्वार पर ही मिल सकती है और जगह जो बड़प्पन मिलती है सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है, इंद्रियों का धोखा है। देखो राजा भरतरी को कैसी बड़प्पन मिल गई, जनक को कैसी बड़प्पन मिल गई, शबरी भीलन को कितनी ऊंची बड़प्पन मिल गई। नहीं तो शबरी भीलन की क्या दशा रही होगी आश्रम में कल्पना भी नहीं कर सकते हम। भील जाति की स्त्री जाति की छ उसके उठाए हुए लकड़ी भी हवन में नहीं लगाई जा सकती, ऐसा माहौल था उस समय। कितना उसने सहा होगा और डटी रही, कैसा बड़प्पन मिला। जरा थोड़ो चौथो के हाँ तपाना करूं मालाऊ घट, तो ऐसे आदमी की तरक्की होना बड़ा कठिन। जिसको हर स्थिति में धन्यवाद दिखता है ईश्वर और गुरु की कृपा के दर्शन होते उसके लिए ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा बेपर्दे हो जाती है। राजकुमार साधु बन गए और बुढ़े गुरु को ये साथ जा रहे यात्रा करने को, भोजन करके सोए हैं सांप निकला है, बुढ़े साधु जग गए, जवान साधु शिष्य सोया है। साधु ने पूछा क्यों आया, बोले तुम्हारा चेला है लेकिन मेरा वैरी है, मैं इसके गले का खून पीऊंगा। बोले रुक जा, खून की 2 बूंद मैं तेरे को दे देता हूँ उसके गले की। शिष्य की छाती पर गुरु बैठ गए, चप्पू निकाला जरा सा, रक्त की बूंदे ले ली। शिष्य की आंख खुली, फिर देखा कि गुरुजी के हाथ में छुरी है और गुरुजी बैठे निश्चिंत होकर सो गया। गुरुजी ने हंसराज बूटी लगा दी, हाथ घुमा दिया, नींद आ गई। संध्या हो गई, गुरु ने देखा कि अब ये खतरे की जगह सोना ठीक नहीं, उठो बेटा तेरी थकान रात्रि की नींद में मिटेगा, उठो अब संध्या हो गई। गुरु चेला जा रहे हैं, उस भूतपूर्व राजकुमार अभी जो साधु बन गया है, गुरु पूछते हैं कि बेटा कुछ पूछना है तो पूछ। बोले गुरु जी कुछ नहीं पूछ, कोई शंका है तो पूछ, मैं तेरी छाती पे बैठा था चक्कू लेकर, तेरी आंख खुल गई थी। बोले हाँ तो कुछ पूछना है। बोले नहीं नहीं, जब मैं गुरु को अर्पण कर दिया तो गुरु जी जो करेंगे पहले के लिए करेंगे। लाखों बार मर गया, एक बार गुरु के हाथ से मर गया तो घाटा क्या पड़ेगा। गुरु ने कहा बेटा तेरा प्रारब्ध योग था, सांप तेरे गले का खून पीने आया था, मैंने उसको रोका, उसने बोला अभी रुक जाऊंगा तो दूसरे जन्म में लूंगा, इसलिए मैंने उसको तेरे रक्त की बूंद। शिष्य रोने लगा कि मेरा समर्पण कम है इसलिए गुरु को अभी मुझे समझाना पड़ता कि ये कारण था, नहीं तो जब हाथ गुरु का होता है तो हाथ से थोड़े पूछता है। गुरु जी का अंग, मैं अभी गुरु जी का अंगत नहीं बना, शायद इसीलिए गुरु जी ने मेरे को, कहीं संदेह न हो जाए इसलिए गुरु ने मेरे आगे वर्णन किया। गुरु जी मैं आपका अंगत हो जाऊं। गुरु ने कहा बेटा हो जाऊंगा नहीं, हो गया तू। जयराम जी निहाल हो गया, देर नहीं होती। आपने तो छूंदनू सुंदावू छे, शेर छपाऊ छे, पण छूंदानी सोई भोंकावी नथी। बोलो जय श्री कृष्ण। छूंदनू सुंदावू छे, सिंह बनावू छे, पण सोई भोंकावी नथी। विना सोई नो सिंह करी दो। ए वक्त स्टीकर नोता, अत्यारे स्टीकर चोड़ी दीधे तो काम चाली जाए हो। जय राम जी। सिंह का स्टीकर नहीं रहा होगा, नहीं तो स्टीकर लगा सकते थे। नारायण ए उपाय खोजवो जोईए। नारायण नारायण। फिर भी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना घंटे बैठ सकते हैं, इतना सुन सकते हैं। भाई परीक्षा तो हो, जितना आगे बढ़ेगा उतना कड़क पेपर आएगा, और आगे बढ़ने से जो कतराता है, कड़क पेपर से जो कतराता है वो आगे बढ़ने से भी रह जाता है। जयराम जी की। नारायण नारायण नारायण। उनको बहुत डर लगता मिले ऐसा खूब ध्यान रखते थे। गुरु जी मौका खोजते तो प्राय मिलता नहीं, फिर भी गुरुदेव ऐसा मौका बना लेते कि ऐसा डांटते ऐसा डांटते। अब गुरु जी आए आबू में, माउंट आबू में, हम रहते थे डीसा सिद्धपुर में। शिवलाल को मैंने बताया कि गुरुजी आए चलो। शिवलाल दूसरे साधक दो जीप कार करके भागे गुरुजी के दर्शन करने। गुरु ने देखा आशारा में क्या है, इधर आओ। जल नीति करते थे, रख दिया। ये तो नकल है, ये तो नकल है। बस फिर तो जो शुरू हुआ गुरु की कृपा, ऐसा गुरुजी ने तकड़ाया, ऐसा तकड़ाया कि शिवलाल को मेरे गुरुदेव के प्रति वैराग्य हो गया कि एमना तो कहीं दर्शन कराता आशे। शिवलाल जिंदे हैं, भगवान लंबी आयुष्य दे। शिवलाल को नफरत हो गई थी कि कोई कारण नहीं, और इतना अपने भक्तों के बीच और बापू इतना काम कर रहे हैं और फिर भी कोई कारण, कोई ऐसे ही इतना डांटना। फिर बार बार मेरे तरफ देखे शिवलाल के, मोढ़ा ऊपर करचली पड़ी न थी और बिल्कुल उसी उत्साह से सेवाई। बापू ने एवा लीधा एरला लीधा एवा लीधा के अजी सुधी शिवलाल याद रखे तो पाछो वैराग्य आवी जाए। लेकिन शिवलाल को फिर पता चला कि सुनार अगर दया करता है तो सोने में से गहना पूरा नहीं बनता है। कुम्हार अगर मिट्टी पे दया करे तो मिट्टी मिट्टी रह जाती, घड़ा नहीं बनता। शिल्पी अगर पत्थर पर दया करे तो पत्थर की मूर्ति से भगवान नहीं बनता। ऐसे गुरुदेव अगर दिखावटी ये दया रखे जैसे माँ बाप दया रखते, ऐसी गुरु दया रखे तो जीव में से ब्रह्म नहीं होता है। और गुरु जैसी दया दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। गुरु दया रखते नहीं और गुरु जैसी दया कहीं मिलती भी नहीं। आश्चर्य है, ये प्रश्नवाचक है। गुरु जैसा दयालु और हितेशी पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। गुरु और ईश्वर के जैसा कोई दयालु नहीं। कोई हितेश नहीं, और गुरु दया करते ही नहीं, ईश्वर दया करते ही नहीं। जयराम जी की जिस अर्थों में आप दया चाहते हो कि मैं भी बना रहा हूं और मेरा भी बना रहे हैं, मेरा अज्ञान भी बना रहे और मेरा ईगो भी बना रहे, इसमें गुरु दया खाते ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और फिर गुरु ऐसी दया करते कि तुमको ऐसा अमर पद दे देते हैं कि गुरु अपने से भी तुम्हें सवाया बनाने के ख्वाब देखते रहते हैं। कितनी दया है। अपना ब्रह्म सुख ब्राह्मी अनुभूति छोड़कर तुम्हारे हाल चाल में तुम्हें आनंद रहे, उत्साह रहे, प्रसन्नता रहे, तुम्हारे साथ खेलने में लग जाते हैं। जैसे कोई सम्राट बच्चों के घरौंदे बनाने के खेल में लग जाए तो कभी न कभी बच्चे भी सम्राट पद को पहचाने। ऐसे ही गुरु अपना ब्रह्म पद छोड़कर ये लो ये दो, इसको लो इसका दिया है, दिन रात ये सब खेल खेलते हैं। ये कितनी दया है जयराम जी की। नहीं तो हमने पढ़ी सूच तमें आली आलिन हूँ आलवाना था। धन तुम्हारा नश्वर, वो अपना धन छोड़कर गुरु बने। तन तुम्हारा हर मास का, वो अपने तन को भी हर मास का मान। मन तुम्हारा चंचल, तुम्हारे पास देने को ऐसी कौन सी चीज है कि गुरु अंजाई जैसे छे हूं तुम्हारी पहाड़ी पैंट बदाम शिवाय। जय श्री कृष्ण। फिर भी तुम्हारे अंदर संभावना है बहुत ऊंची और तुम नाहक संसार बत्ती में पच रहे हो, ये गुरु जानते। पचने की आदत पड़ गई तो पचने वाले को पता ही नहीं कि हम पच रहे हैं। जैसे झोपड़पट्टी में आदमी रहते ना, वहाँ आप बड़े घर में रहने वाले लोग जब झोपड़पट्टी में जाते हैं तो उनको दया आती कि ये भी कपड़ा धोया हुआ कपड़ा पहनना सीखे, ये भी ब्रश करना सीखे, दातुन करना सीखे, ये भी अच्छे मकान में रहना सीखे, आपको दया आएगी। लेकिन उनको तो हैबिट पड़ गई, आपको लगेगा कि बेचारे कितने लाचार हैं, कितने दुखी है, लेकिन उनका मन वहीं सेट हो जाता है और उनको वहीं मजा आने लगता। जब वो उस गंदगी की गंदगी जाने और उत्तम जीवन जीने की तत्परता करेंगे तभी आपकी दयालुता काम आएगी, वरना तो आप उनको मकान में रख दो, वो मकान 10,000 रुपये पगड़ी पे बेच के सट्टा करके फिर झोपड़पट्टी में चले जाते हैं। ऐसा भी तुमने हमने देखा जयराम जी। तो जिसको आदत पड़ गई उस गंदी झोपड़पट्टी में गंदगी में रहने की, उसको देखकर जो सफाई में रहता है उसको दया आती है, और गंदगी वाला गंदगी छोड़ने की तैयारी न करे तो सफाई वाला क्या करे। ऐसे देहर की वो झोपड़पट्टी तो इतनी खतरनाक नहीं, यहाँ तो हाड है, मांस है, मल है, मूत्र है, लीट है, थूक है, पित्त है, कफ है, उसमें रहने की पुरानी आदत है कि हूँ अम्थो भाई। और जो शुद्ध बस्ती में आत्म परमात्मा में रहते हैं उन पुरुषों को दया आती है और आपको बताते कि भाई आई कोई नथी तू जाग, जागी ने जो नारायण 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 तुलसी के पत्त से बांसने की तैयारी। भगवान के निमित्त सेवा में प्रीति, भगवान में प्रीति ऐसा ही भगवान के सुमरण में प्रीति। अभी तो प्रतीक्षा भी तप भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, मधुर मधुर पक्का निर्णय कर दो। जैसे इब्राहिम लिंकन ने पक्का निर्णय किया था, कंगाल लड़के ने राष्ट्रपति होने का निर्णय किया और राष्ट्रपति हो गए, ऐसे हजारों राष्ट्रपति पदों से भी ऊंचा पद है आत्म पद। तुम आज ही पक्का निर्णय करो कि आपड़े काम करूं मुझे, बोलो दररोजे रिपीट करो कि गमे तेम थाय, गुरु नो अनुभव ते मारो अनुभव मारे करवो छे। दुनिया का बनकर देख लिया, अब भगवान का बन के देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल आसान, राष्ट्रपति की कुर्सी तो जड़ है, वो पूरा व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ा, और भगवान तो चेतन है, व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ करते भगवान हजार गुने कदम आते, तू एक कदम चल वो हजार कदम आता है। कुर्सी तो मिलकर मिट जाती है और वो मिलकर कभी नहीं मिटता है, दृढ़ निश्चय करके बस मेरे को तो साक्षात का। रोज सोच, रोज लिख स, रोज बोल स, अथवा साक्षात्कार, स माना साधना, शा माना साक्षात्कार। प्रभु तूने हमें पसंद किया है, इसीलिए प्रभात के 5:30 बजे से 9:30 तक हम इस सभाओं में इस स्थल पर चुपचाप बैठ पाए। मानो हमारा आखिरी जन्म है, अगर आखिरी जन्म नहीं होता या तू हमें पसंद नहीं करता तो हम इस जगह पे पहुंच भी नहीं पाते, टिक भी नहीं पा पाते। अभागा आदमी, पापी आदमी इतना पुण्य स्थल पर लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, नहीं टिक सकता उसका मन, उसको पाप भगा कर ले जाते हैं। हमारे पाप इतने नहीं कि हमें भगा के ले जाए, और ये तेरी रहमत है प्रभु, तारी दया छे मारा वालुड़ा, मारा गुरुदेव तारी कृपा छे। बोलो हृदय पूर्वक बोलो, तो आटलू ध्यान आपे छे तारी कृपा छे, तू थाकतो नथी, कंटाळतो नथी, छूटा छेड़ा नहीं करी नाखतो, बहिरा छूटा छेड़ा करी दे, आदमी छूटा छेड़ा करी दे, पण गुरु छूटो छेड़ो ज नहीं छोड़ता, हमें मागिए तो नहीं आलता। भगवान हमको नहीं छोड़ते और सदगुरु नहीं छोड़ते और धर्म हमें नहीं छोड़ता, बाकी सब लोग छोड़ देते, दोस्त भी छोड़ देते हैं, लेडी लेडा भी छोड़ देते हैं। भगवान हमको नहीं छोड़ता, गुरु नहीं छोड़ता और धर्म नहीं छोड़ता। जो तुम्हें नहीं छोड़ते उनको तुम कभी छोड़ने की कोशिश मत करो, बेवकूफी न करना। हे भगवान, तू हमें कभी नहीं छोड़ता तो हम भी तुझे कभी न छोड़े। हे गुरु, तू हमें कभी नहीं छोड़ता तो हम तेरे साधन को और तेरे कृपा को कभी न छोड़े। हमें फांका और मोह कई बार दूर ले जाता है, छुड़वा देता है, लेकिन फिर तू संभालता है। हे मारा वालुड़ा, हे मारा इष्ट देव, हे मारा तारणहार, मारी नावड़ी दरिया मां डोले गुरुजी, बन्ने बाजू दही दूध मां पग राखवानी नावड़ी मारी छे, मारी नावड़ी दरिया मां डोले गुरुजी, भव सागर थी तार जोरे, एमा ममता न मगर छे मोटा, नथी पड़ता ए मुझ थी विखुटा, मने पकड़ियो छे जबरा जोरे गुरुजी, भव सागर थी तार जो, कोई वखते मोह तो कोई वखते अहंकार मने मुंजवे छे, कोई वखते सुविधाओं मने सतावे छे, तो कोई वखते पोतानु डोडा पण मने दगो दे छे, कोई वखते पारकी पंचायत मने परेशान करे छे, तो कोई वखते साधना नो अहम पांगरी ने मने दगो दे छे, कोई वक्त स्वार्थी भाव मने तारा स्नेह थी वंचित करे छे, तो कोई वक्त अहंकारी भाव मने ओगड़ी जाए छे, ओगाड़ी दे छे मारा वालूड़ा। ईश्वरम शरणम गच्छामि, बोधम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, प्रभुम शरणम गच्छामि। अहंकारनी अने फाकानी शरणे तो विनाश थई गयो, बर्बादी थी वही 50-60%। बाकी जेको बच्चो है तहांजी मर्जी। लाखों लाखों जन्म हमने मन के विकारों में बर्बाद कर दिए हैं, मन की मान्यताओं में इस जिंदगी को भी खपा रहे हैं। अब प्रभु तेरा पाना मीठा लागे, जो तू चाहता है वही हो। तू जीवात्मा की मुक्ति चाहता है, तू जीवात्मा का पूर्ण विकास चाहता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तुम्हारी मर्जी। हे मारा गुरुदेव तुम्हारी मर्जी, हे मारा इष्ट देव तुम्हारी मर्जी, मारी मर्जी नहीं। मारी मर्जी तो मने घणी वार मार खवड़ाव्यो, मारी मर्जी तो मने जन्म मृत्यु में धकेल्यो, मारी मर्जी तो मने मृत्यु नी शरणे 84 लाख जन्म में धकेल्यो। हवे तारी मर्जी पूर्ण हो मारा गुरुदेव, मारा आत्मदेव, मारा इष्ट देव। शराबी दूसरे को शराबी बनाता है, ऐसे मुक्त आदमी दूसरे को मुक्त बनाता है। भगवान दूसरे को भगवान मैं बना देता है। भगवान तेरी मर्जी पूर्ण हो, अहंकार की मर्जी पूरी नहीं हो, मेरी वासनाओं की मर्जी पूर्ण न हो, तेरी कृपा की मर्जी पूर्ण हो। हे गुरु कृपा तू सदैव मेरे हृदय में निवास करना। हे गुरु कृपा, हे गुरु भक्ति, मेरे दिल को कभी मत छोड़ना। अगर गुरु कृपा और गुरु भक्ति दिल में नहीं तो अहंकार और वासना ही कब्जा कर लेती है। भगवान और गुरु नहीं तो शैतान और हैवान दिल को नचा लेता है। हे दिलबर तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे मारा वालूड़ा, हे मारा कानूड़ा, हे मारा इष्ट देव। मैं ईमानदारी से प्रार्थना कर दूं, ये भी तू दया करना। ईमानदारी से तेरी कृपा को समझ सकूं, इतनी भी ईमानदारी नहीं रही फाके में, अब तू कृपा कर प्रभु। मेरे अहंकार ने, मेरे मोह ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे पता ही नहीं चलता। तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे मुक्ति दाता तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे भक्ति दाता तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे विश्व का दाता तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे मारा वालूड़ा, हे मारा तारणहार, हे मारा परमेश्वर, तू हाथ ढालजे, तुम्हारी मोची पकड़ दे, मने छोड़ी दे तो नहीं, मारा अहंकार ना हवाले मने छोड़ी दे तो नहीं, मारी चतुराई ना हवाले मने छोड़ी दे तो नहीं। मारा वाला तू तारी कृपा नी दोर मजबूत कर दे मारा देव, मारी श्रद्धा नी दोर पाकी कर दे मारा प्रभु। फिरत फिरत प्रभु आइयो, पड़ियो तो शरणाए, साधक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। शरीर की भक्ति तो बहुत जन्मों तक किया, कोई शरीर साथ में नहीं रहा। नश्वर संबंधों की भक्ति बहुत जन्मों तक किया, कोई संबंध शाश्वत नहीं। अब तो शाश्वत तेरी भक्ति, तेरा ध्यान और तेरा ज्ञान। मारी नावड़ी दरिया मा डोले गुरुजी मने भव सागर थी तारजो की कृपा तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो रहा है मोम गलती है फिर जो रंग मिलाओ मिल जाता है।